हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 6-2 अगले दिन पिछली रात पैर में लगी चोट के कारण शिविका अपने कमरे में नहीं गई और इस वजह से वो किसी से नहीं मिल पाई। रात को काव्या जिद करके थोड़ी देर के लिए उसके पास आई, लेकिन अपने बिस्तर और तकिए के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। ज्योति के साथ शिविका ने काव्या को उसके कमरे में ही सोने भेज दिया। शिविका खुद मैनसन के ग्राउंड फ्लोर के एक गेस्ट रूम में थी। कमरे के बदलने के कारण उसे भी नींद नहीं आ रही थी। काव्या के नर्म मुलायम बिस्तर पर सोने की आदत उसे पड़ चुकी थी। कभी कभी वो अपने बिस्तर पर भी सो जाती थी, लेकिन ये गेस्ट रूम उसे बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। आधी से ज्यादा रात उसने जागकर बिताई। हाँ, इस बीच उसके पिता से उसकी अच्छी बात हुई। रात को सोने जाने से पहले उसने काफी देर तक अपने पिता से बात की, जो अक्सर नहीं हो पाती थी। व्हीलचेयर पर होने के कारण उसके पिता ऊपर नहीं आ पाते थे, और इस वक्त पैर में चोट लगी होने के कारण शिविका भी उनका दर्द महसूस कर रही थी। अगली सुबह, करण का घर। समर करण के साथ नाश्ता कर रहा था। करण ने अपनी सैलरी अपनी सौतेली माँ को घर के खर्च के लिए दे दी थी। इस वजह से आज करण का पसंदीदा नाश्ता आलू के पराठे और टमाटर की चटनी दही के साथ बना था। करण और समर दोनों मज़े से नाश्ता कर रहे थे। वे जानते थे कि ये VIP ट्रीटमेंट अस्थायी है उनके पैसे की वजह से। फिर भी खाने को लेकर कोई नाराज़गी ना रखते हुए दोनों अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई आया। उसे देखने के लिए उनकी माँ वहाँ से चली गई। इस वक्त समर और करण डाइनिंग टेबल पर अकेले थे, क्योंकि उनके पिता पहले ही घर पर नहीं थे। वे गली के नुक्कड़ पर लोगों के साथ बैठे हुए थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे और मौका मिलते ही जुआ भी खेल रहे थे। करण को इस बारे में पता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वे उसके पिता थे। उसने कई बार समझाने की कोशिश की थी। उन दोनों में झगड़ा भी हुआ था, लेकिन उनकी आदतें सुधरने का नाम ही नहीं लेती थीं। अपनी माँ को जाते देख समर थोड़े तनाव में आते हुए बोला, भाई 40,000 आपने इतने सारे पैसे मम्मी को क्यों दे दिए? आपको नहीं पता वो कितनी लालची है। आप अगर उन्हें अपनी आधी से ज्यादा सैलरी दे देंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा? उनका लालच कभी हद नहीं होगा। वो अगली बार आपसे और ज्यादा पैसे मांगेंगे। करण ने समझाते हुए कहा, अरे लेकिन मैंने सारी चीज़ों का हिसाब लगाकर ही इतने पैसे दिए हैं। वैसे भी 10,000 से ज़्यादा तो कर्ज ही अदा करना है हर महीने का, और 30,000 में घर का खर्च हो जाएगा, क्योंकि इससे कम में तो घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता ना। समर ने उसे याद दिलाया, हाँ लेकिन 10,000 रुपये मैं भी तो देता हूँ ना। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देते थे, क्योंकि मेरी पिछली जॉब में मेरी सैलरी इतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि इस जॉब में है। इसलिए अब इस महीने से तुम चाहो तो वो पैसे अपने पास ही रख सकते हो, या फिर एक काम करो, EMI पर अपने लिए भी एक बाइक ले लो, तुम्हें कोचिंग से कॉलेज आने जाने में आसानी होगी। समर ने अपनी समस्या बताई, अरे लेकिन मम्मी ने अगर मुझसे भी पैसे मांगे तो फिर मैं उनसे क्या बोलूँगा? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मम्मी को मैं समझा लूँगा, तुम उनकी फ़िक्र मत करो, अपने बारे में भी सोचा करो समर, अभी तुम छोटे हो, अभी से सारी जिम्मेदारियाँ उठाने की मत सोचो। करण को मुस्कुराते देख समर भी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर बाकी की बातें सोचते हुए उदास होते हुए बोला, भाई जिसके माँ बाप ऐसे हों वहाँ बच्चों को वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ता है, नहीं तो वक्त निकल जाता है और पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी बातें सुनकर करण बहुत गर्व महसूस करते हुए बोला, कितनी समझदारी भरी बातें करने लगा है मेरा छोटा भाई, कभी कभी तो लगता है तू ही मुझसे बड़ा है। समर चेहरे पर एक फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, अरे नहीं भाई, आपसे बड़ा तो मैं कभी नहीं हो सकता, ना दिल में, ना उम्र में और ना ही ओहदे में। करण ने हंसते हुए कहा, पागल कहीं का, हर बात सीरियसली ले लेता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तब तक समर की माँ भी वहाँ आ गई। उसने दोनों भाइयों को बात करते हुए पूछा, क्या हंसी मजाक चल रहा है दोनों भाइयों के बीच? मुझे भी बता दो थोड़ा, मैं भी हंसूं, नहीं तो तुम्हारे पापा की वजह से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ रोना ही लिखा है। समर ने बात बदलते हुए पूछा, अरे नहीं कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। और कौन था दरवाजे पर? कोई लेनदार था क्या, या फिर पापा का कोई दोस्त? उसकी माँ ने बताया, नहीं बस दूध वाला था, उसके भी महीने के पैसे दे दिए मैंने और दूध भी ले लिया, लेकिन तुम लोग और पराठे लो ना, मैं और बना दूंगी अगर कम पड़ गए तो। करण बोला, नहीं मेरा तो हो गया, बस अब चाय पी लूँ। समर ने भी खाली प्लेट अपने आगे से सरकाते हुए कहा, हाँ मेरा भी हो गया मम्मी, रहने दो, अब और पराठे मत बनाना हमारे लिए। उनकी माँ वहाँ से जाती हुई बोली, ठीक है मैं ये दूध का पतीला फ्रिज में रख कर आती हूँ। इतना बोलकर उनकी माँ वहाँ से चली गई। अपना अपना नाश्ता खत्म करने के बाद करण और समर भी घर से बाहर निकल गए। करण ने आधे रास्ते तक समर को लिफ्ट दी और फिर अपने ऑफिस चला गया। आज शिविका ने उसे घर पर आने के लिए ना तो कॉल किया और ना ही कोई मैसेज किया था। दूसरी तरफ वृंदा मैनसन, शिविका ने भले ही करण को कोई फ़ोन कॉल या मैसेज नहीं किया था, लेकिन इस वक्त वो उसके रोज़ की तरह ही घर आने का इंतज़ार कर रही थी। हर्षिता अपने ऑडिशन के लिए आज काफ़ी सुबह ही निकल गई थी। वो शिविका से मिल कर गई थी और शिविका ने उसे ऑल द बेस्ट कहा था। काव्या भी अपने प्री स्कूल के लिए चली गई थी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और ज्योति के साथ। काव्या को लेकर शिविका किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतती थी। शिविका के पिता भी काफ़ी देर तक उसके साथ बैठकर बात करते हुए उसे साथ दे रहे थे, ताकि चल फिर ना पाने की वजह से वो अकेला महसूस ना करे। वे पिछले कई सालों से ये चीज़ झेल रहे थे और वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी को भी कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उनकी तरह बेबस, लाचार या बुरा महसूस हो और अकेले रहकर वो डिप्रेस हो जाए। पाँच पाँच, ऋषभ आज अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। वो कहीं भी नहीं गया था क्योंकि उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे ऑफिस जाना था। भले ही वो कुछ घंटों के लिए जाए, लेकिन जब ऑफिस में कोई बॉस नहीं होता तो सारे काम करने वाले लोग ढीले पड़ जाते हैं। ऋषभ को शायद बुखार था, इस वजह से उसका बिस्तर से उठने का मन नहीं हो रहा था। लेटे लेटे ही 10 बज चुके थे। करण के पिता ने एक नौकर को उसे देखने के लिए भेजा क्योंकि शिविका और वे दोनों ही सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उसके कमरे तक नहीं जा सकते थे। साथ ही उन्होंने नौकर से ऋषभ को नीचे उनसे मिलने के लिए भी बुलाया। कुछ देर बाद करण अब तक घर नहीं आया था। शिविका ने इस बार गुस्से में सीधा उसका नंबर डायल किया क्योंकि वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी और अकेले उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ ही काम की उसकी सारी फाइलें भी ऊपर स्टडी रूम या उसके कमरे में थीं। करण भी ऑफिस में अकेला बैठा बोर हो रहा था क्योंकि शिविका के बिना उसे वहाँ ज्यादा काम नहीं था। आखिर वो उसका पर्सनल असिस्टेंट था, वो सारा उसका ही काम देखता था। उसने सोचा था कि शिविका की जगह ऋषभ ऑफिस जा रहा है, तो जब ऋषभ ऑफिस में मिलेगा तो करण शिविका की जगह उसका काम भी संभाल लेगा। लेकिन आज तो ऋषभ भी अभी तक ऑफिस नहीं आया था, इसलिए करण ने अपना मोबाइल बजते ही कॉल रिसीव कर ली। शिविका का नाम देखकर उसे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा फील हुआ। कॉल रिसीव करते ही करण एकदम फॉर्मली बोला, हेलो मैम, हाउ आर यू, आपकी तबीयत अब ठीक है या नहीं?
शिविका ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, व्हाट द हेल करण, मैंने तुम्हें इसलिए तो कॉल नहीं किया कि तुम मुझसे मेरा हालचाल पूछो, और वैसे भी इतनी फिक्र थी तो खुद भी कॉल कर लेते। और ये मैम क्यों बोल रहे हो, इतना फॉर्मली क्यों बात कर रहे हो? करण ने फिर से उसी तरह जवाब दिया, सॉरी मैम, बट मैं ऑफिस में हूँ और यहाँ पर बाकी सारे लोग भी हैं, तो अगर मैं आपको अपनी होने वाली वाइफ कहकर बुलाऊं तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? शिविका ने जानबूझकर उसे हल्के से डांटा, ओह शट अप, जब देखो तब फ्लर्ट करने लगते हो, सामने हो या फिर फोन पर, और वैसे भी वहाँ ऑफिस में ऐसा कौन सा जरूरी काम है, ये बताओ कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? करण ने इस बार जानबूझकर कहा, काम तो नहीं है, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ऑफिस नहीं आया था, तो मुझे लगा शायद यहाँ पर भी लड़कियाँ मुझे मिस कर रही होंगी, और सच में सब मुझे याद कर रही थीं और मुझे यहाँ देखकर इतना खुश हो गई हैं कि क्या बताऊँ मैं तुम्हें, आपको मैम, शिविका ने थोड़ा हक जताते हुए कहा। करण, चुपचाप अभी के अभी निकलो तुम वहाँ ऑफिस से और सीधा घर आओ, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें हर वक्त मजाक सूझता है, वो भी फालतू की बातों के साथ। करण ने फिर से उसी तरह कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। अब तुम्हें ये बातें फालतू लगती हैं तो मैं क्या करूँ, ये बता दो तुम्हें क्या सुनना पसंद है, फिर मैं वही बोल दूंगा। शिविका ने अपनी तरफ से सामान्य रहते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरे लिए इतना कुछ करने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस घर आ जाओ, उसके बाद यहीं पर डिस्कस करते हैं काम के लिए। करण फिर से असिस्टेंट की तरह बर्ताव करते हुए बोला, ओके मैम, जैसा आपका ऑर्डर, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूं, क्योंकि इतना टाइम तो लग ही जाएगा ना यहां से आपके घर तक। शिविका ने उसके जवाब में कहा, हाँ हाँ ठीक है, आधा घंटा, बाय। इतना बोलकर शिविका ने करण की अगली बात सुने बिना ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसकी बातें सोचकर वो इडियट की तरह मुस्कुराने लगी और फिर खुद ही उसने अपने आप को सामान्य करते हुए कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा उसने। शिविका, तू ऐसे पागलों की तरह मुस्कुरा रही है उसके बारे में सोचकर। नहीं नहीं, मुझे उसकी याद नहीं आ रही थी, मैंने उसे काम के लिए यहाँ पर बुलाया है। हाँ बस, और कुछ नहीं। शिविका बस अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही थी और ये बात उसे भी बहुत अच्छी तरह से पता था। अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात हो गई हो तो मैं अंदर आऊं क्या? बुलाया था शायद आपने? दरवाजे की तरफ से ऋषभ की आवाज आई। वो एकदम सीरियस खड़ा होकर शायद काफी देर से शिविका को देख रहा था और उसकी बातें भी सुन रहा था। उसे वहाँ सामने देखकर शिविका थोड़ी शक में पड़ गई, क्योंकि ऋषभ की बात सुनकर उसे समझ नहीं आया कि आखिर ऋषभ ने क्या सुना है और क्या नहीं।